ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। शांति प्रक्रिया के शेष कार्य को निष्कर्ष तक पहुंचाने में पूर्ण सहयोग देने की तीन दलों के शीर्ष नेताओं की प्रतिबद्धता। प्रतिपक्ष दलों द्वारा संघीय संसद की बैठक संचालन में अवरोध। विपक्ष ने अनावश्यक हंगामा करके सदन को अवरुद्ध किया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की टिप्पणी। सभी पार्टियों और सरोकार वालों के साथ चर्चा के बाद सहमति का माहौल बनाकर संविधान संशोधन किया जाएगा। गृहमंत्री रमेश लेखा का बयान। और अमेरिका आने वाली कारों और कारों के पार्ट्स पर 25% लगाया जाएगा टैरिफ। अब समाचार विस्तार से। प्रमुख तीन राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने शांति प्रक्रिया के शेष कार्य को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए अपने अपने दलों का पूर्ण सहयोग रहने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जवाबदेहिता निगरानी समिति और द्वंद्व प्रभावित संगठन द्वारा आयोजित संक्रमणकालीन न्याय संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेताओं ने इससे पहले के दो आयोगों सत्य निरूपण एवं मेल मिलाप आयोग तथा मानवाधिकार आयोग के कामकाज की समीक्षा की और आगामी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए सभी पक्षों से गंभीरता से काम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि सरकार संक्रमणकालीन न्याय से जुड़े दोनों आयोगों के कामकाज को सफल बनाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने याद दिलाया कि शांति प्रक्रिया के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए संसद द्वारा संक्रमणकालीन न्याय कानून पारित किया जा चुका है और मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर मामलों में कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने सत्य निरूपण और सामंजस्य स्थापित करने के लिए गठित आयोग निष्पक्ष जांच करेगा। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि शांति प्रक्रिया के अधूरे कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। वहीं माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि नेपाल की शांति प्रक्रिया दुर्घटनाग्रस्त न हो इसके लिए सेना समायोजन और संविधान निर्माण में बड़े जोखिम उठाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गंभीर अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है। सम्मेलन में उपस्थित संयुक्त राष्ट्र की प्रतिनिधि हाना सिंगर ने कहा कि नेपाल ने संघर्ष प्रबंधन में विश्व स्तर पर एक उदाहरण पेश किया है। प्रतिनिधि सभा की बैठक को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई बैठक नहीं बैठ सकी और इसे दोपहर 2 बजे तक के लिए टाल दिया गया। दोपहर 2 बजे भी बैठक नहीं हो सकी और अंततः इसे कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बैठक के स्थगन का कारण विपक्षी दलों का लगातार विरोध है, जो नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिंग को हटाए जाने के निर्णय पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। कल की बैठक में भी विपक्ष ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से इस मामले में स्पष्टीकरण की मांग करते हुए संसद को अवरुद्ध कर दिया था। विपक्ष का कहना है कि सरकार को घिसिंग को हटाने के कारणों को स्पष्ट करना होगा। सभामुख देवराज घिमिरे ने संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों के सचेतकों के साथ चर्चा शुरू की है और सहमति बनाने का प्रयास जारी है। प्रतिपक्षी दलों ने आज भी राष्ट्रीय सभा की बैठक को अवरुद्ध किया। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक पद से कुलमान घिसिंग को हटाए जाने के मामले में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से जवाब मांगते हुए विपक्षी दलों के सांसदों ने बैठक अवरुद्ध किया। बैठक शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने खड़े होकर विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल ने बैठक संचालन के लिए सांसदों से सहयोग की अपील की। हालांकि विपक्षी सांसदों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके चलते अध्यक्ष दहाल ने एक घंटे बाद बैठक को स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विपक्ष द्वारा गैर प्रासंगिक मुद्दों को उठाकर संसद के कामकाज को अवरुद्ध करने की कड़ी निंदा की है। महिला उद्यमी महासंघ के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी व्यापार मेले के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि एक निकाय के कर्मचारी को हटाने के मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करके संसद को रोकना उचित नहीं है। आज से 18 अगस्त तक चलने वाले इस मेले में महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित नेपाली उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा है कि संविधान संशोधन केवल सभी राजनीतिक दलों और सरोकार वालों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सहमति का माहौल बनाना जरूरी है। नेपाली कांग्रेस के रूपंदेही क्षेत्र नंबर 3 द्वारा भैरवा में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में बोलते हुए गृहमंत्री लेखक ने कहा कि संविधान बने हुए 10 साल हो चुके हैं और इसके सकारात्मक व जटिल पहलुओं की समीक्षा की आवश्यकता है। गृहमंत्री लेखक ने कहा कि देश ने निरंकुश पुरुषता और तानाशाही व्यवस्था को पीछे छोड़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था अपना ली है और अब कभी भी पुराने रास्ते पर नहीं लौटना चाहिए। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। उप प्रधान तथा शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने कहा है कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के माध्यम से प्राप्त अधिकारों को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। आज कावरी प्लान चौक के बनेपा नगरपालिका के 44वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने बताया कि बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित बनेपा, पनौती और धूलीखेल में चल रहे पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के पुनर्निर्माण में एशियाई विकास बैंक ने रुचि दिखाई है। मंत्रालय ने भी इसे प्राथमिकता देते हुए जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी की है। ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का ने कहा है कि कार्बन क्रेडिट की बिक्री से प्राप्त धनराशि को गरीब और वंचित वर्ग के नागरिकों के हित में उपयोग किया जाना चाहिए। वैकल्पिक ऊर्जा प्रोत्साहन केंद्र द्वारा आज काठमांडू में आयोजित एक गोष्ठी में बोलते हुए मंत्री खड़का ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थानों को देश और जनता के हित में काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता विधेयक को प्रतिनिधि सभा से पारित कराकर कानून के रूप में लागू करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी गई है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिंग ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करते हुए सरकार द्वारा उन्हें पद से हटाने के निर्णय को रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के सूचना अधिकारी निरंजन पांडे के अनुसार ये याचिका कल पेश की गई थी और आज आधिकारिक रूप से दर्ज हो गई है। इस मामले पर कल सुनवाई होगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर नई घोषणा की है। इसके मुताबिक अमेरिका आने वाली कारों और कारों के पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप के इस कदम से ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। ट्रंप ने कहा है कि नए टैरिफ 2 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। कारों के पार्ट्स पर ये टैरिफ मई या इसके बाद से शुरू होंगे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंतिम इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। शांति प्रक्रिया के शेष कार्यों को निष्कर्ष तक पहुंचाने में पूर्ण सहयोग देने की 3 दलों के शीर्ष नेताओं की प्रतिबद्धता। प्रतिपक्ष दलों द्वारा संघीय संसद की बैठक संचालन में अवरोध। विपक्ष ने अनावश्यक हंगामा करके सदन को अवरुद्ध किया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की टिप्पणी। सभी पार्टियों और सरोकार वालों के साथ चर्चा के बाद सहमति का माहौल बनाकर संविधान संशोधन किया जाएगा। गृहमंत्री रमेश लेखक का बयान। और अमेरिका आने वाली कारों और कारों के पार्ट्स पर 25% लगाया जाएगा टैरिफ। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।